आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारतीय फौज ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जंगबंदी का कोई इख्तिताम नहीं है और इसकी कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है। इसरो ने पीएसएलवी रॉकेट के जरिए जमीन का मुशाहिदा करने वाले EOS-09 सैयारचे को मुकर्रर मदार में पहुंचाने में नाकाम रहने की वजूहात जानने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। भारत के महकमा मौसमियात ने अगले 5 दिन के दौरान केरला, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। एनसीसी की मुहिमजू टीम ने दुनिया की बुलंदतरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए आज रूस के सदर पुतिन और यूक्रेन के सदर जेलेंस्की के साथ बातचीत करेंगे। और फुटबॉल में अरुणाचल प्रदेश के मकाम यूपिया में भारत ने बांग्लादेश को 4-3 से हराकर 19 साल से कम उम्र का चैंपियनशिप खिताब अपने पास बरकरार रखा है। अब खबरें तफसील से। भारतीय फौज ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया है जिनमें कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी कल खत्म हो गई। भारतीय फौज के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान फौजी कार्रवाई के डायरेक्टर जनरल की सतह पर 18 मई को कोई बातचीत नहीं हुई। उसने कहा है कि जहां तक मुखासमाना कार्रवाइयों के तातुल का सवाल है, जैसा कि 12 मई को DGMO की बातचीत में फैसला किया गया था, इस तातुल को खत्म करने की कोई तारीख मुकर्रर नहीं है। फौजी कार्रवाइयों के डायरेक्टर जनरल की सतह की बातचीत भारत और पाकिस्तान के दरमियान 12 मई को मुनक्किद की गई थी। बातचीत के दौरान इस अहद को जारी रखने के मामलों पर तबादले ख्याल किया गया कि दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ एक मरतबा भी फायरिंग नहीं करेंगे, कोई जारहाना कदम नहीं उठाएंगे और कोई मुखासमाना कार्रवाई नहीं करेंगे। इस बात से भी इत्तेफाक किया गया कि दोनों मुल्क सरहदों और आगे के इलाकों से फौजियों की तादाद में कमी करने को यकीनी बनाने के लिए फौरी इकदाम पर गौर करेंगे। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री भारत और पाकिस्तान से मुतालिक खारजा पॉलिसी की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आज पार्लियामानी कायमा कमेटी को जानकारी फराहम करेंगे। तवक्को है कि खारजा सेक्रेटरी ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद जंगबंदी के ऐलान के बारे में भी कायमा कमेटी को मालूमात फराहम करेंगे। वो वजारत खारजा के नुमाइंदों के जबानी सबूत और बहरी सलामती से मुतालिक वजारत दिफा के पहलू से भी कमेटी को मुत्तला करेंगे। भारत और पाकिस्तान के दरमियान फौजी महाजारई के बाद जम्मू कश्मीर में शहरी इलाकों में सफाई सुथराई करने की गरज से एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करते हुए फौज ने पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक मुख्तलिफ गांवों में ऐसे 42 बम के गोले नाकारा बना दिए हैं जो फटे नहीं थे। दिफाई तर्जुमान के मुताबिक इन बम के गोलों ने मकामी लोगों की जिंदगी और सलामती के लिए संगीन खतरा पैदा कर दिया है। यह ऑपरेशन हिफाजत के तमाम प्रोटोकॉल का पास रखते हुए अंजाम दिया गया ताकि किसी भी शहरी की जिंदगी या इमलाक को नुकसान होने और खतरे से बचाया जा सके। जम्मू कश्मीर के रियासी कस्बे में कल हुब्बुल वतनी का जज्बा देखने को मिला जब शहरी ऑपरेशन सिंदूर की शानदार कामयाबी का जश्न मनाने के लिए एक खसूसी तिरंगा रैली के लिए बड़ी तादाद में जमा हुए। यात्रा ऑफ इंडियाज ग्लोरी के हिस्से के तौर पर मुनक्किद की गई तिरंगा रैली में भारतीय मुसल्ला अफवाज की हिम्मत और हौसले को खिराज तहसीन पेश किया गया और रैली में इत्तेहाद और कौम के जज्बे को उजागर किया गया। बीजेपी ने कल कौमी राजधानी के मुख्तलिफ हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकाली। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाते हुए नई दिल्ली, जनकपुरी, नजफगढ़, मटियाला और द्वारका समेत पूरे शहर में यात्राएं निकाली गईं। आर के पुरम में एक रैली से खिताब करते हुए नई दिल्ली की एमपी बांसरी स्वराज ने कहा कि यात्रा में उन खवातीन ने भरपूर हिस्सा लिया और इनकी जबरदस्त हिमायत हासिल हुई जो ऑपरेशन सिंदूर के लिए यकजहती का मुजाहरा करने के लिए पेश रहीं।
हमारी मातृशक्ति बहुत भारी संख्या में आई है और आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी शक्ति स्वरूपा भारत की नारी शक्ति, भारत की मातृशक्ति आम फोर्सेस का धन्यवाद करने के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए आई है। सिंदूर केवल श्रृंगार का पर्याय नहीं, शक्ति का पर्याय है, शौर्य का पर्याय है और ऑपरेशन सिंदूर अब न्याय का संकल्प है।
हम ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं तो ऐसे में कौम भारतीय फौजियों की बहादुरी को सलाम पेश करती है। मुसल्लाह अफवाज को खिराज तहसीन के तौर पर आकाशवाणी न्यूज एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम परमवीर चक्र अवार्ड याफ्ता मेजर रामस्वामी परमेश्वरन को याद करते हैं जिन्होंने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान अजीम कुर्बानी दी थी।
मुंबई में पैदा हुए मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को जनवरी 1972 में महार रेजिमेंट में शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया गया था। भारत श्रीलंका समझौते के तहत भारत की कई फौजी यूनिट्स को कानून और अमन बरकरार रखने के लिए श्रीलंका भेजा गया था। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन की यूनिट महार को भी ऑपरेशन पवन में शिरकत के लिए श्रीलंका भेजा गया था। 25 नवंबर 1987 को मेजर रामेश्वरन देर रात तलाशी की कार्रवाई से अपने दस्ते के साथ लौट रहे थे कि अचानक उनके दस्ते पर मिलिटेंट्स के एक ग्रुप ने घात लगाकर हमला किया। जबरदस्त हाजिर दिमागी से काम लेते हुए रामेश्वरन ने बहादुरी से उन्हें घेरे में ले लिया। इससे मिलिटेंट्स भी पूरी तरह हैरान रह गए। आमने सामने की लड़ाई में एक मिलिटेंट ने उनके सीने में गोली मारी, लेकिन अपने बहुत ज्यादा जख्म की परवाह न करते हुए मेजर रामेश्वरन ने इस मिलिटेंट से राइफल छीन ली और उसे गोली मारकर हलाक कर दिया। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद मेजर रामेश्वरन अपने फौजियों को हुक्म देते रहे और आखिरी सांस तक अपने फौजियों को हिम्मत और तहरीक देते रहे। इस पूरी कार्रवाई के दौरान 5 मिलिटेंट्स मारे गए और उनसे 3 राइफलें और 2 रॉकेट लॉन्चर जब्त कर लिए। मेजर रामेश्वरन को उनकी इंतहाई जबरदस्त दिलेरी और अजीम कुर्बानी के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
भारत की खलाई तहकीक की तंजीम इसरो ने इस वाकये की तफ्तीश के लिए एक कमेटी बनाई है कि एक PSLV रॉकेट कुर्रे अर्ज के मुशाहदे वाले सयारचे EOS-09 को उसके मुकर्रर मदार में पहुंचाने में नाकाम रहा है। इसरो के चेयरमैन वी नरायनन ने कहा कि कमेटी ने इसकी वजह मालूम करने के लिए कल कई बार बातचीत की। ये सयारचा मुकर्रर मदार में इसलिए नहीं पहुंचाया जा सका कि PSLV-C-61 रॉकेट में कल श्रीहरिकोटा से इसके दागे जाने के कुछ ही मिनट बाद कोई खराबी पैदा हो गई थी। डॉक्टर नारायणन ने कहा कि रॉकेट 4 मरहलों पर मुश्तमिल है, जिनमें से इस रॉकेट के पहले 2 मरहले कामयाबी के साथ मुकम्मल हुए।
Today we attempted a launch of PSLV-C-61 vehicle. Vehicle is a 4-stage vehicle. First 2 stages performed as expected, and during the third stage, it's a solid motor system. We are seeing observation. The motor pressure, there was a fall in the chamber pressure of the motor case, and the mission could not be accomplished. We are studying the entire performance. We shall come back at the earliest.
Uttar Pradesh ki sabiq wazir ala और बहुजन समाज पार्टी की रहनुमा मायावती ने आकाश आनंद का पार्टी के आला राब्ताकार की हैसियत से तकरूर किया है। ये फैसला नई दिल्ली में कौमी सतह की एक मीटिंग में किया गया। ये भी फैसला किया गया कि आकाश आनंद मुल्क में BSP के मुस्तकिल प्रोग्राम के चार्ज संभालेंगे। पार्टी ने यह भी ऐलान किया है कि वो बिहार में आइंदा असेंबली चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। नेशनल क्रेडिट कोर्स NCC ने एक संगमील तय किया है। उसकी मुहिमजू टीम ने कामयाबी के साथ माउंट एवरेस्ट सर की है। ये टीम 10 NCC कैडेट्स, 4 अफसरान, 2 जूनियर कमीशन्ड अफसरान, 1 खातून क्रेडिट इंस्ट्रक्टर और 10 नॉन कमीशन्ड अफसरान पर मुश्तमिल है। 10 कैडेट्स में 5 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस मुहिम को 3 अप्रैल को नई दिल्ली से रवाना किया। वजारत दिफा ने बताया कि मुल्क भर से मुंतखब किए गए ये कैडेट्स ना तजुर्बेकार हैं। इन लोगों को एक सख्त तरीक़ेकार के तहत चुना गया है और ये लोग एक तवील तरबियती तरीक़ेकार से गुजरे हैं। अपनी तैयारी के तौर पर इन लोगों ने माउंट अभिगमन पर मशक की है। उसके बाद 15 कैडेट्स की एक टीम को चुना गया, जिसे सर्दी के मौसम में रहने और तकनीकी तरबियत फराहम की गई। ये टीम औसतन 19 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है। नेपाल के शेरपाओं ने NCC की इस टीम के हौसले की तारीफ की। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीब रहमान।
सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में सोलापुर शहर की एक फैक्ट्री में आग लगने के हादसे में लोगों की हलाकत पर ताजियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरी ने कहा कि आग लगने के इस हादसे में बहुत से अफराद की हलाकत की खबर इंतहाई दर्दनाक है। उन्होंने सभी मुतासिरा कुनबों के तहीं गहरी ताजियत का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। इसी दौरान वजीर आजम मोदी ने मरने वालों के कुनबों को वजीर आजम के कौमी राहत फंड से 2-2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 50-50 हजार रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है। उन्होंने जख्मियों के लिए जल्द सेहतियाबी की दुआ की है। पाकिस्तान के सिंध सूबे में تین نامعلوم بندوق برداروں نے لشکر طیبہ کے دہشت گرد رضا اللہ نظامنی خالد عرف ابو سیف اللہ خالد کو ہلاک کر دیا، جس کا 2006 میں آر ایس ایس ہیڈ کوارٹر پر حملے میں دماغ کار فرما تھا۔ نئی دلی میں حکام نے بتایا کہ خالد 2000 کے ابتدا میں ہی نیپال سے لشکر طیبہ کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کو چلانے میں پیش پیش رہتا تھا۔ وہ بھارت میں کئی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، روس کے صدر ولادیمیر پوتین، یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اور نیٹو سے وابستہ مختلف ملکوں کے رہنماؤں کے ساتھ الگ الگ بات چیت کریں گے، جس کا مقصد یوکرین میں جنگ ختم کرنے کی کوشش ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب ٹرمپ نے کہا کہ بات چیت میں اس خونریزی کو روکنے پر توجہ دی جائے گی، جس میں ہر ہفتے روس اور یوکرین کے 5000 سے زیادہ سپاہی مارے جا رہے ہیں۔ روس کے ترجمان دمیتری پیسکوو نے تصدیق کی ہے کہ صدر پوتن اور امریکی صدر کے درمیان اس ٹیلی فون بات چیت کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ یوکرین میں مہم جاری رکھنے اور اپنے مقررہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس وافر فوجی طاقت موجود ہے۔ روس کے سرکاری ٹیلی ویژن پر انٹرویو دیتے ہوئے پوتن نے کہا کہ روس کو اس بات پر مجبور کرنے کی بہت سی کوششیں کی گئیں کہ وہ نیوکلیائی ہتھیاروں کے استعمال کی غلطی کر ڈالے، لیکن روس نے اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ پوتن نے مزید وضاحت کی کہ اس مہم کے مقاصد میں تنازع کی اصل وجوہات کو ختم کرنا، دیر پا اور مستقل امن کی صورتحال پیدا کرنا اور روس کو سیکیورٹی فراہم کرنا شامل ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے 1925 مئی کے دوران مہاراشٹر کے لیے موسم سے متعلق وارننگ جاری کی ہے۔ توقع ہے کہ 22 مئی کو کرناٹک ساحل سے دور مشرقی وسطی بحیرہ عرب پر کم دباؤ والا علاقہ بنا رہے گا، جس سے پورے مہاراشٹر میں معمول کا موسم متاثر ہوگا اور اس کے نتیجے میں اگلے ہفتے بارش کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ فٹ بال میں بھارت نے اروناچل پردیش کے یوپیا میں پینلٹی شوٹ آؤٹ میں بنگلہ دیش کو 3-4 گول سے ہرا کر 2025 ساؤتھ ایشین فٹ بال فیڈریشن U19 چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ دونوں ٹیموں نے کھیل کے آخری وقت تک 1-1 گول کیا تھا، جس پر میچ کا فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹ سے کیا گیا، جس میں بھارت نے بنگلہ دیش کو شکست دی۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات ارون جیتلی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز نے دہلی کیپٹلز کو 10 سے ہرا دیا۔ 200 رن کے نشانے کا تعاقب کرتے ہوئے گجرات کی اوپننگ جوڑی سائی سدرشن اور کپتان شبمن گل نے آؤٹ ہوئے بغیر مشکل ہدف کو نہایت آسان بنا دیا اور دلی کی گیند بازی کو تہس نہس کر دیا۔ آج لکھنؤ میں بھارت رتن شری اٹل بہاری واجپائی ایکانا کرکٹ اسٹیڈیم میں لکھنؤ سپر جائنٹس کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 کھیلا جائے گا۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ہندی اور انگریزی میں براہ راست نشر ہونے والے اپنے فون ان پروگرام پبلک اسپیک میں آج رات 9:30 ٹی بی کی روک تھام اور اس کے علاج کے موضوع پر ایک تفصیلی مذاکرہ نشر کرے گا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حبیب۔
شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخبارات نے حیدرآباد میں پیش آنے والے اندوہناک حادثے کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے، حیدرآباد میں بھیانک آتش زدگی، 8 بچوں سمیت 17 افراد ہلاک، متاثرہ خاندان سے صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم کا اظہار تعزیت۔ بائیکاٹ ترکیہ کے تناظر میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بمبئی کی جانب سے ترک تعلیمی اداروں کے ساتھ تمام معاہدے معطل کیے جانے کی خبر کو روزنامہ انقلاب نے نمایاں طور سے صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے کیرلا میں 10ویں جماعت کے طلبہ کے لیے روبوٹکس کی تعلیم لازمی کیے جانے کی خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ عالمی خبروں کے صفحے پر شمالی غزہ سے 2 دن میں 3 لاکھ فلسطینیوں کی نقل مکانی کی خبر کو اخباروں نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی سرخی ہے، فلسطینیوں کو لیبیا منتقل کرنے کے منصوبے کی طرابلس میں امریکی سفارت خانے نے تردید کی۔
اور آخر میں خاص خبر ایک بار پھر۔ بھارتی فوج نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کا کوئی اختتام نہیں ہے اور اس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے۔ اسرو نے پی ایس ایل وی راکٹ کے ذریعے زمین کا مشاہدہ کرنے والے EOS-09 سیارچے کو مقررہ مدار میں پہنچانے میں ناکام رہنے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اگلے 5 کے دوران کیرلا، کرناٹک، گوا اور مہاراشٹر میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ این سی سی کی مہم جو ٹیم نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کر لیا ہے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے آج روس کے صدر پوتن اور یوکرین کے صدر زیلنسکی کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔